نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آپ لوگوں کی ماشاء اللہ سے تعداد دیکھ کے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جاگے ہوتے ہیں. ایک تو یہ وقت ویسے بھی آج جب آپ کے لیے یہ روم اوپن کیا گیا اور وہی دعائیں پلے کی گئیں جو رمضان میں پلے کی جاتی ہیں، تو بالکل وہی سما بن گیا. ایسے لگ رہا تھا کہ وہی وقت دوبارہ آ گیا. تو مجھے پتہ ہے کہ بعد میں کئی لوگ سن لیں گے، مگر جو یہ وقت ہے اس میں میں دیکھنا چاہ رہی تھی کتنے لوگ ہیں جو واقعی جاگے بھی ہوتے ہیں یا نہیں. فجر کا ٹائم ہے اور اس وقت تو سونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ نے صحیح نیند لی ہے رات کو تو پھر تو بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے. دراصل جب ہم فجر کے بعد بھی جاگنا چاہیں تو شیطان کئی طرح کے وسوسے دماغ میں لاتا ہے کہ تم تو آج بہت تھکی ہوئی ہو، پتہ نہیں رات کو تم نے پوری اچھی نیند بھی نہیں لی، اور آج تو صرف اتنے گھنٹے سوئی ہوں تو چلو سو جاتی ہوں، کوئی نہیں بعد میں ویب سائٹ پہ سن لوں گی، بعد میں 10 بجے سن لوں گی. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. وہ تو سن تو آپ لیں گے، سننے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اس وقت آپ کیا کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو دیکھیں اس ٹائم پہ فرشتے آپ کا جو قرآن آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ گواہی لے کر آسمانوں پہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ شام عصر سے اب تک تھے آپ کے ساتھ، وہ اس وقت ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، وہ جا رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں، تو اس وقت ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے نا. تو اب جو جانے والے ہیں وہ یہ دیکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہی ہیں. تو اسی لیے فجر کے بعد قرآن پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ مشہود ہے، یعنی اس کی شہادت دی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں یا اپنا سبق ریوائز کرتی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، تو وقت کیسے ملے گا جب دن کا کچھ حصہ تو ہم نے بالکل سو کے ہی گزار دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 8-9 بجے اٹھیں گے نا، تو جتنا بھی جلدی آپ کام کرنا چاہیں مگر جو اس وقت آپ نے کام کیا ہوگا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ جو وقت ہے یہ اتنا بابرکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس میں کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھ دی. تو اس وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ اس وقت میں جو 1 گھنٹے میں کام کریں گے نا، وہ آپ اس وقت 4 گھنٹے لگا کے کریں گے. ایک تو بالکل خاموشی، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی آنے جانے والا نہیں، تنہائی ہے، اور آپ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھائی بھی کر سکتی ہیں. آپ بہت سکون کے ساتھ جو بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے وہ بھی اونچی آواز میں کریں، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ کے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پھر جب فجر کے بعد آپ سو جاتے ہیں، بعد میں تو آپ سو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس ٹائم پہ اگر آپ سو جاتے ہیں نا تو ایک سستی چھائی رہتی جب آپ جاگتے بھی ہیں. تو آپ دیکھیں گے جب آپ جاگیں گے تو ایک سستی سی ہوگی. اینی ہاؤ، ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ. حرمت والے مہینے کون کون سے تھے؟ ایک تو مہینہ الگ سے ہے رجب کا، اور اس کے بعد ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم. 3 یہ کنزیکٹو آتے مہینے. इन महीनों के बारे में हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरमत वाले महीनों में जंग नहीं करते थे। हाँ, कोई और चढ़ाई करे तो और बात है, बल्कि जंग करते हुए अगर हुरमत वाले महीने आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई को मौकूफ कर देते थे, स्टॉप कर देते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसके बारे में फरमाया है, अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम, हुरमत वाले महीने बदले हुरमत वाले महीनों के हैं। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, यस अलून का अन शहर हरामी क़िताल इन फी, वो सवाल करते हैं आपसे हुरमत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में। कुल किताल उन फी ही कबीर, कह दीजिए इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब ये महीने शुरू हो जाते हैं तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा और किसी के साथ भी इस तरह की कोई कन्फ्रंटेशनल बात ना करें, अपनी तरफ से शुरुआत ना करें, क्योंकि हमें कम से कम हुरमत वाले महीनों की इज्जत रखनी चाहिए। देखिए ये महीने, इन महीनों में तो क्या मतलब है कि आपको तो सारे साल में ही लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, मगर स्पेशली इन महीनों की इज्जत जो है ना, वो हमारी, यानी कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया। आपने देखा सूरह माईदा जो हमने शुरू किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, और उसी के अंदर दूसरी आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, अपने लिए शाइर अल्लाह को हलाल ना करो, वला शहर अल हराम, और ना हुरमत वाले महीनों को। हराम हलाल करने से क्या मुराद है, यानी कि उनका लिहाज करो, उनकी तौहीन ना करो, उनका अदब करो, इनकी अजमत को पहचानो और इनमें खसूसियत के साथ अल्लाह की नाफरमानियों से बचना चाहिए। ये इज्जत वाले हैं ना, तो इनको इज्जत दें। तो ये मुबारक हैं, मोहतरम महीने हैं, इसी वजह से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महीनों में जंग नहीं शुरुआत किया करते थे, बल्कि जो कुफार होते थे वो भी इन महीनों की इज्जत किया करते थे, इनकी हुरमत किया करते थे। तो कई उलमा का यही ख्याल है, जैसे इब्ने अब्बास से मरवी है कि इन महीनों में लड़ाई करना हलाल ना कर लिया करो, और इनकी हुरमत कई उलमा का ख्याल है कि क्यामत तक कायम रहने वाली है। तो ये तो बात हो गई हुरमत वाले महीनों की, और इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है कि वैसे तो हम सारा वक्त ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानियों से बचेंगे, मगर स्पेशली किसी की इज्जत करके जब आप किसी चीज़ से बचते हैं तो ये शायर अल्लाह की, ये भी शायर अल्लाह में से है ये हुरमत वाले महीने। आप जब इनकी इज्जत करेंगे कि अल्लाह की नाफरमानियों से बचेंगे, लड़ाई झगड़े से स्पेशली बचेंगे, तो ये इसकी ताज़ीम करना होगा। अब आगे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत दिन आ रहे हैं, और वो हैं ज़िलहज के शुरू के 10 दिन। इतनी इनको शायद ऐसे अहमियत नहीं दी जाती, ना इतना इनका प्रचार किया जाता है, मुझे इस वजह नहीं समझ आती, मगर आप देखेंगे जैसे रमज़ान की या दूसरे चीज़ों की जो हमने खुद अपनी तरफ से बना ली हुई हैं, शबरात हो गई और भी जो भी हमने खुद से ही खुद साख्ता ही चीज़ें बनाई हुई हैं, कई ऐसी ईद मिलादुन नबी और इस तरह, जिनके मनाने का ना करने का कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो उनको तो हम इतने जोशो खरोश से मनाते और बताते और आगे फैलाते हैं और मशहूर की हुई हैं, मगर इन दिनों के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। बल्कि मैं सोचती हूँ कि बचपन में तो हमें पता भी नहीं था कि ये कोई ख़ास दिन है, हालांकि ये कितने ख़ास हैं इसका इंशाल्लाह ताला हम अभी बात करते हैं। आपको बुखारी की एक हदीस मैं सुना देती हूँ इस बारे में कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज्जा के 10 दिनों से बढ़ के कोई दिन भी पूरे साल में, यानी कोई दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हो। अगर आप कोई नेक अमल करते हैं तो जो ज़िलहज्जा के इन 10 दिनों में करेंगे ना, उससे ज्यादा बढ़ के पूरे साल में चाहे आप करते रहे, मगर इससे ज्यादा बढ़ के अल्लाह ताला को महबूब नहीं है। बाप इसी से इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि ये दिन कितने खास दिन है। और ये बुखारी की हदीस है, मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है। और यहाँ तक कि कई उलमा ने ये भी फरमाया कि ये जो दिन है ये तो साल भर में ऐसी फजीलत वाले कोई और दिन आते ही नहीं है, क्योंकि रमज़ान में तो रमज़ान के आखिरी दिन भी बहुत फजीलत वाले हैं, क्योंकि उनमें भी नमाज होती है, रोज़ा होता है, सदका वगैरह होता है। मगर उलमा कहते हैं कि इन दिनों में हज भी तो अदा होता है, तो इन दिनों में रोज़ा भी होता है, कुर्बानी आप भी करते हैं तो सदका भी हो गया, और आप इसके अलावा हज भी करते हैं, तो ये बहुत फजीलत वाले दिन हैं। और कई उलमा ने ये कहा है कि दिन तो ये फजीलत वाले हैं, रातें रमज़ान की आखिरी रातें जो हैं वो फजीलत वाली हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इन 10 दिनों का अमल, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि पूरे साल किसी दिन भी कोई अमल करो, नेकी का अमल करो, तो वो अल्लाह ताला को ऐसा प्यारा नहीं है जैसा इन 10 दिनों में करोगे। तो फिर हमें क्या क्या करना चाहिए? इन 10 दिनों को तो हमें गनीमत समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें नसीब किए, हमारी ज़िंदगी में आए। पता नहीं कितनी दफ़ा ज़िंदगी में ये 10 दिन आए और हमने शायद ईद की तैयारियों में ही गंवा दिए हों, पता ही ना हो कि इन दिनों में भी कुछ करना होता है। तो सबसे पहले तो हम सुन्नत से ही देखते हैं कि इन दिनों में क्या करने की हमें सबसे ज़्यादा ताकीद है। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन का अमल अल्लाह के नज़दीक इन दिनों से बड़ा और प्यारा नहीं, बस तुम इन 10 दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह हु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। और इन्हीं 10 दिनों की कसम भी अल्लाह ताला ने खाई भी है, वल फज्र व लयालिन अशर में। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये दिन कैसे प्यारे हैं, और इन दिनों को हमने बड़ा कीमती समझना है। इन दिनों में हमने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र में मसरूफ़ रखना है, क्योंकि बुखारी में आता है कि हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा जो थे ना, वो इन दिनों में बाज़ार में चले जाते थे और ऊंची आवाज़ में तकबीरें पढ़ते थे, और बाज़ार वाले भी इनके साथ तकबीरें पढ़ने लगते थे। सोचें वो समा ही क्या होता होगा। हमारे बाज़ारों में आज तक आपने कभी सुनी है तकबीर की आवाज़? वो क्या समा होता होगा कि हर तरफ तकबीरात, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर, इसकी सदाएं हो। और इन्हीं 10 दिनों में एक बहुत ही स्पेशल दिन आता है, और वो है आराफात का दिन, 9th ज़िलहज का दिन। और इस दिन के रोज़े की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले और अगले साल के गुनाह इससे माफ़ हो जाते हैं, पिछले साल के भी। और आप सोचेंगे कि अगले साल तो अभी हमने किए ही नहीं, तो फिर कैसे माफ़ हो गए? तो अल्लाह ताला की तरफ से ये यानी एक खुशखबरी है। ये नहीं कि अब हम दिलेर हो जाएं कि अब अगले साल जो मर्जी करें, बात इसके अंदर एक ये है कि अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह गुनाहों से बचा के रखेगा, जो लग्जिशें हो जाएंगी अल्लाह पाक उनको माफ़ कर देगा। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि वो दिन का रोज़ा इंसान को मिल जाए, 9 अरफात का। मगर जो लोग हज पे गए हों तो वो नहीं फिर रोज़ा रखेंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फिर हज पे नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। हाँ, जो पीछे रह जाने वाले हैं, जो नहीं जा सके, तो वो इस दिन रोज़ा रखेंगे, क्योंकि ये इतना स्पेशल दिन है। अरफात का ऐसा प्यारा दिन है ये कि अल्लाह ताला अरफात के दिन ना फरिश्तों से फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझे कहा करते थे कि ये खून बहाएंगे, हैं, तो आज मैंने इन सारों को माफ़ कर दिया, और जिनके लिए ये माफी मांग रहे हैं उनको भी माफ कर दिया। ये तो इतना प्यारा दिन है, जब अरफात में लोग खड़े होकर माफी मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इनाम होता है। तो अल्लाह ताला उनके अलावा भी लोगों को माफ कर देते हैं जिनके लिए वो माफियां मांग रहे होते हैं। तो ये भी अपनी बख्शिश कराने का बड़ा ही एक ज़बरदस्त मौका है हमारे लिए कि पता नहीं जो हम चीज़ें भूल गए हैं रमज़ान में, उसके बाद बस रमज़ान ख़त्म हुआ तो वो पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई कपड़े थे जो रमज़ान के हमने पहने हुए थे, और जो ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो उतरने शुरू हो गए। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें क्लास की तादाद से, हाँ, कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता उतरे हैं। देखा ना आप, शैतान तो फ्री हो गया। जितनी आपने कलेक्शन की हुई थी रमज़ान में, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करके सामान समझ लें तैयार करते हैं, अब रमज़ान जब ख़त्म होगा तो ये रमज़ान ऐसे ही था जैसे आप किसी डेजर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पे एक शेल्टर आया है, एक ऐसी जगह आई है जहाँ पे पानी भी है, खाना भी है, साया भी है। अभी थोड़ी देर में आपके काफ़िले ने यहाँ से रुख्सत हो जाना है। जो उस वक़्त अपने लिए खाना पानी और सब चीज़ें ले लेगा तो वो तो अगले सफ़र में उसके लिए आसानी होगी, लेकिन जो इंसान वहाँ पे अपना वक्त ज़ाया कर देगा तो वो जब आगे चलेगा तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। यही हाल रमज़ान का है, जिसने उसमें अपने नफ्स को पाक किया होगा, जिसने उसमें ऐसी नेकियां की होंगी तो वो आगे उसके काम आएंगी शैतान से लड़ने के लिए, उससे जंग करने के लिए। और जिसने बस थोड़ा बहुत लिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो चलता गया कमज़ोर होता गया और शैतान उस पे गालिब आ जाता है। सोचें कि अगर 2 महीनों में हमारा ये हाल हो गया तो आगे आगे क्या होगा। तो रमज़ान तो हमारी ट्रेनिंग का टाइम था, और रमज़ान में कैसी बरकत थी कि इस वक्त हम जागे होते थे, इससे पहले से जागे होते थे, जितने बजे आज जागे उससे बहुत पहले से जागे होते थे। लेकिन रमज़ान ख़त्म होते ही हमें क्या अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या दुआओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस महीने में तो हम बहुत अपने आप को बचा बचा के रखते हैं, तो फिर भी हमें कितनी बख्शिश की दुआएं करते हैं। मगर अब तो आप देखें कि इस वक्त तो शैतान भी खुले में है और इस वक्त में हम बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, तो इस वक्त कितनी ज़्यादा अपने आप को बचाने की और अपनी मग़फ़रत की दुआएं करने की ज़रूरत है। तो पता नहीं है कि किस वक्त में मौत आ जाए। मौत तो ये इंतज़ार नहीं करेगी कि रमज़ान आए, ये बख्शिश की दुआ मांगे तो फिर ही मैं इस पे आऊँ। मौत तो वैसे ही इंसान को उचक लेगी अचानक से किसी दिन, तो अपनी तैयारी तो हम करके रखें ना। तो बात हो रही थी इन 10 दिनों की, एक और हदीस आपको सुना देती हूँ इनकी अहमियत के बारे में, फिर आगे चलते हैं हम। कि ज़िलहज का जो पहला अशरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी दिन का अमल अल्लाह के नज़दीक इन दिनों के अमल से अफजल नहीं है। लोगों ने पूछा, जिहाद भी नहीं? फरमाया, जिहाद भी नहीं सिवाय इस मुजाहिद के अमल के जिसने अपनी जान और माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया हो। सिर्फ एक उसका अमल है जो इन दिनों के अमल से अफजल है, और वो कौन है? जिसने ऐसा जिहाद किया हो कि अपनी जान भी और अपना सारा का सारा माल भी लुटा दिया हो, अब वो खाली हाथ रह गया, वो शहादत भी उसने पाई और अपना माल भी लुटा दिया। इस मर्तबे तक को हम कहाँ पहुंच सकते हैं? सिर्फ उसका अमल अफजल है इन 10 दिनों का के अमल करने से। तो इन 10 दिनों की हम बाकायदा प्लानिंग करें, प्लान करके इन 10 दिनों को गुजारें, ये ना हो कि ये दिन हमारे हाथ से ऐसे ही निकल जाए। तो एक तो थोड़े से मैं आपको ये तकबीरात का बता दिया कि आप कोशिश ये करें कि घर वालों को भी रिमाइंड करें, थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ें कि उनको भी याद आ जाए और वो भी आपके साथ पढ़ा करें। देखें, जब बाज़ारों में तकबीरात बुलंद हो जाएं तो हमारे घरों में क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है ना। तो ये बड़े प्यारे दिन हैं, इन दिनों को ज़ाया नहीं करना हमने। और ये दिन इंशाल्लाह ताला हमारे तकरीबन अभी से 10-12 दिन बाद शुरू हो जाएंगे, आप अपने कैलेंडर्स में चेक कर सकते हैं, 9 तारीख का कौन सा, 9 जिलहज का दिन कौन सा आ रहा है, और ये कि आप देख सकते हैं कि कब से ये दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका स्पेशल एहतमाम करें। कोशिश करें कि उन पूरे 9 दिनों में ही आप रोज़ा रख लें, ठीक है? पूरे 9 दिनों में ही आप रोज़ा रख लें, नहीं भी है तो 9 रफात का रोज़ा तो ज़रूर रखें इंशाअल्लाह ताला। और जिसने भी कुर्बानी का इरादा करना है कि वो इस महीने में कुर्बानी करेगा, तो एक जो सरबरा है घर का, उसकी तरफ से जो कुर्बानी होती है पूरी फैमिली की तरफ से हो जाती है वो। लेकिन ये याद रखें कि हदीस में आता है कि जब कोई आदमी ज़िलहज्जा की 10वीं को कुर्बानी देने का इरादा रखता हो, तो वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से ना बाल काटे और ना ही नाखून, ठीक है? देखिए, हाँ, आप भी उसी हालत में हो जाते हैं तकरीबन जैसे एहराम वाला हो गया। एहराम उसने वहाँ पे बांधा, वो तो हज के लिए निकला, आप घर बैठे ही एक ऐसी उसमें आ गए स्टेट में कि आपने भी अपने ऊपर वही कैफियत तारी कर ली कि अल्लाह हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सके, मगर यहाँ पे रहते हुए ही हम जिस तरह से भी तुझे राज़ी कर सके। तो अपने ना उन जिन्होंने कुर्बानी करनी है, फर्स्ट कोई काट लें, फर्स्ट से पहले काट लें, फर्स्ट से फिर आप जब वो चांद नज़र आ जाएगा तो फिर 10 तारीख तक, कुर्बानी के वक्त तक, फिर वो ना बाल काटें और ना नाखून काटें, ठीक है? और हमने इस दफ़ा का एक टारगेट रखना है, और वो ये कि इंशाअल्लाह ताला हमने ये अपनी रूटीन बनानी है। आहिस्ता आहिस्ता ही बनेगी क्योंकि पहले से आदत नहीं है, मगर कोशिश स्टार्ट कर दें ये कमिंग वीक से ही कि हम मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखा करें। इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें, और जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि बहुत ही इससे आपको आसानी इतनी लगेगी ना कि कुछ लगेगा ही नहीं कि आपने कोई मुश्किल काम किया है। ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू में शायद थोड़ा सा आपको सुस्ती आए, मुश्किल लगे, जाहिर है शैतान भी है और हमारा अपना नफ्स भी है। तो अगर आपको किसी दावत पे, किसी ऐसी जगह पे जाना है, फिर तो नहीं रखें, लेकिन अदरवाइज आप कोशिश करें कि आपका मंडे और थर्सडे का रोज़ा ज़रूर हुआ करें। तो देखें, पता नहीं हमने कितने रोज़े ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं हम, यानी जो हमारे हुए ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, उनकी भी एक तरह से कॉम्पनसेशन हो सकती है। और इसी तरह जो रोज़े रखे भी थे, पता नहीं वो कैसे रखे, उस वक़्त इतनी अक़ल भी नहीं थी, समझ नहीं थी, सही रखे भी थे या नहीं रखे थे, कोई उनमें ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि हमारे रोज़े फट गए हों, बातें लो गए हों हमारे रोज़े। तो ये इसका भी डर है, क्योंकि जब इंसान को समझ ना हो तो फिर तो उससे ये हो सकता है, मुमकिन है। तो हम कोशिश करें कि हम ये रोज़े इस नीयत से रखें कि अल्लाह ताला जो मेरे रोज़े रह गए हैं पिछले, कोई अगर रह गया है तो अल्लाह ताला उसकी कॉम्पनसेशन हो जाए, ठीक है? और सुन्नत समझ के भी रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ये। तो इंशाअल्लाह आपके उन रोज़ों की भी तकमील हो जाएगी। दूसरे, आपको 2 पारे पढ़ने के लिए कहे गए थे, और मैंने जब देखा तो ये बहुत ही, यानी ऐसा नहीं था कि मुश्किल आपको कोई टारगेट दिया गया था, और 2 पारे मुझे पता है कि आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको क्यों ये कहा गया था कि एवरी डे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तकरीबन अगर आप 2 से 3 रकू पढ़ लें तो आपके 2 पारे मुकम्मल हो सकते हैं 1 महीने में। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक सिर्फ रमज़ान की हद तक नहीं है, ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए। तो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, मगर आपको रोज़ पढ़ने को क्यों कहा जाता है, इसमें भी हिकमत है। एक तो ये बात है कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो चाहे थोड़ा हो मगर कंटिन्यूस हो, मुस्तकिल हो। ऐसे नहीं कि एक दिन में हमने 2 पढ़ लिए, उसके बाद कोई पता ही नहीं पूरा महीना। देखिए, अगर आपको खाना दे दिया जाए कि ये आपका खाना है, एक दफा ही खा लो, उसके बाद महीना भर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगी चाहे थोड़ा थोड़ा ये मुझे दे दो मगर हर रोज देना। ये तो जिस्म की गिजा थी ना, तो रूह की गिजा आप कहते हैं एक ही दफा मैं पूरा एक बड़ा घूंट ले लूं और उसके बाद फिर मैं पूरा महीना फारिग रहूं, तो ऐसे तो नहीं है ना। फजर के बाद कितना टाइम लगेगा आपको कुरान के 2 रुकू पढ़ने में? ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए ना। तो अपनी ये आदत बनाइए कि हमने रोजाना कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। कभी भी हमारी जिंदगी में कुरान जो है ना, इसकी डोज ऐसा ना हो कोई भी एक दिन भी कि कुरान की डोज से हम महरूम रह जाएं। एक बड़े प्यारे ताबई हैं, बहुत पसंद भी है मुझे वो, उरवा बिन जुबैर। ताबई कौन होता है? जिसने किसी सहाबी को देखा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। सहाबी वो होता है जिसने अपनी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन पे ईमान लाया हो। ताबई कौन होता है? जिसने किसी सहाबी को देखा हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये उरवा बिन जुबैर कौन है? हज़रत आयशा की बहन है, हज़रत असमा उनके बेटे हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी ना हज़रत सफ़िया, उनके पोते हैं ये, ठीक है। तो इनका दोनों तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके रिश्ता जुड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जिक्र अल्लाह ताला का करने वाले, रोज़े रखने वाले, और बल्कि गर्मियों में बहुत रोज़े रखा करते थे, और बहुत ही ज़्यादा कुरान पाक के साथ इनका ताल्लुक़ था। अक्सर ये तिलावत में मशगूल रहते थे और रोज़ाना कुरान पाक का 1/4 हिस्सा तिलावत देख कर किया करते थे। तो सोचें, 1/4 हिस्सा पूरे कुरान का, पारे का नहीं, आपको तो रमज़ान में पारे का खा गया था ना, ये कुरान का है। फिर रात के वक्त ना वही हिस्सा फिर नफलों में पढ़ते थे, और उनकी वफात तक इनका यही रूटीन इनकी रही। सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, लाइफ में एक दफ़ा। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो कौन सा मौका था, कि वो एक दिन क्या था जिस पे इन्होंने कुराने पाक से, जो जिसकी सारी ज़िंदगी कुरान के गिर्द घूमती है, एक दिन नहीं उन्होंने पढ़ा। हमें तो बहाना मिल जाता है ना कि बस पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अब बिल्कुल ही हर चीज़ से ही ताल्लुक़ ख़त्म, अब तो ना कुरान पढ़ना है, नमाज की वैसे ही छुट्टी है, और कोई जिक्र अजकार करना नहीं है। तो वो तो गंदगी की, नजासत की हालत होती है, उसमें तो और शैतान आता है, तो गंदगी की तरफ ही आता है ना। इसीलिए तो हम टॉयलेट जाते हुए हम दुआ पढ़ के जाते हैं, क्योंकि शैतान को ये गंदगी की चीज़ें, गंदगी की जगहें पसंद है। अब आप देखें कि एक दिन वो कौन सा था कि जिसमें इन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। कहा जाता है कि उस वक़्त के जो खलीफा थे, इन्होंने इनको बड़ी मोहब्बत से बुलाया। उस वक़्त दमिश्क में जो था ना, वो कैपिटल हुआ करता था, तो मुलाकात के लिए इनको दावत दी और इन्होंने कबूल किया। तो मदीना में रहते थे, तो ये वहाँ पे गए अपने बेटे को लेकर, इनका बेटा, जवान बेटा था। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो खलीफा ने बड़ा इनका इस्तकबाल किया, इनको रॉयल गेस्ट के का एज़ाज़ दिया। तो ये हुआ कि खलीफा ने इनको कहा कि आप जाएं और मेरे जो शाही अस्तबल होते थे वहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि इनके बेटे को सवारी का बहुत शौक था। तो जब ये वहाँ पे गए तो इनके बेटा एक घोड़े के पास गया और उसने इतनी ज़ोर से एक टांग मारी जो उसके सीने में लगी, और उनकी डेथ हो गई। अब आप देखें कि जब ये अपने बेटे की कब्र पे मिट्टी डाल रहे थे ना, एक तो दूसरी जगह ये नहीं है कि बेटे की वफ़ात ने इनको कुरान से दूर रखा। अब आप ये नोट कीजिएगा, क्या बात हुई। अच्छा, इस दौरान इनके पाँव में बड़ा शदीद दर्द हुआ और पाँव में एक सूजन सी पैदा हो गई, और बड़ी तेज़ी से वो जो वर्म था वो पिंडली की तरफ फैलने लगा और इनकी हालत बड़ी बिगड़ गई। तो खलीफा जो थे वो बहुत परेशान हुए, फौरी तौर पे उन्होंने जो अपने हकीम वगैरह थे उनको बुलाया कि इलाज पे पूरी तवज्जो दें, कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। और सारे जितने भी हकीम आए हुए थे उन्होंने यही कहा कि इनकी टांग काटनी पड़ेगी वरना इनकी मौत हो जाएगी। तो जब टांग काटने का वक्त आया तो एक जो माहिर सर्जन था, उसने जो अपने औजार लेकर हाजिर हुआ, तो उसने हज़रत उरवा से कहा कि हम आपको थोड़ी सी शराब पिलाएंगे ताकि टांग कटने की तकलीफ़ ना महसूस हो। तो ये बात सुनी तो फरमाने लगे, ऐसा कतन नहीं हो सकता, मैं हराम के ज़रिए अपनी आफ़ियत की उम्मीद नहीं रखता। इस टाइम पे भी कहते मैंने हराम नहीं पीना। तो तबीब ने कहा कि फिर कोई और नशावर चीज़ पी ले, वो आपको पिला देते हैं ताकि तकलीफ़ ना आपको ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप काटें, मैं इस दर्द में भी इंशाअल्लाह ताला सब्र करूंगा और मुझे सवाब मिलेगा इसका। तो जब वो सर्जन टांग काटने के लिए तैयार हुआ तो बहुत सारे आदमी जो थे ना वो हजरत उर्वा के करीब आ गए। तो उन्होंने पूछा ये जमगट्ठा क्यों है, तो उनको बताया गया कि ये आदमी आपको पकड़ लेंगे सारे के सारे मिलके, ताकि जब आपकी टांग कटने लगे तो फिर आपको इतनी मजबूती से पकड़ा हो सकता है कि आप दर्द में संभल ही ना सकें, और जब इतना शदीद दर्द हो तो इलाज में रुकावट ना पैदा हो तो फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। ये सुन के आपने फरमाया इन अफराद को पीछे हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए इस वक्त में सिर्फ अल्लाह की याद, उसकी हमदो सना, उसकी तस्बीह यही काफ़ी है, और आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम शुरू करो, मेरी फिक्र ना करो, मेरा अल्लाह हामी और नासिर होगा। तो उस सर्जन ने पहले कैंची से इनकी टांग का गोश्त काटा, फिर हड्डी पे आरी चलाई। तो उधर वो ये काम कर रहे थे, इधर ये ऊंची आवाज में कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, वो सलसल इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो सर्जन अपना काम करता रहा और ये अल्लाह का जिक्र करते रहे। टांग कट गई और जब खून बंद होने के लिए उन्होंने खोलते हुए तेल में डाला ना, गरम तेल में उस वक्त डालते थे खून बंद करने के लिए, तो उस वक्त ये बेहोश हो गए। और इनकी पूरी ज़िंदगी में यही वो मौका है जिसमें कुरान मजीद की मंजिल ना ये पढ़ सके, बेहोश हो गए थे। तो जब ये सेहत याब हुए थे ना तो अपनी टांग को पकड़ के गौर से देखने लगे और इसे अपने हाथ से उल्टाने पलटाने लगे। फिर इन्होंने फरमाया था ए टांग गवाह रहना, मुझे अल्लाह की कसम है जिसने तुझे पैदा किया है और तेरे जरिए चल के मैं मसाजिद में जाता रहा हूँ, वो अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है कि मैं कभी तुझे हराम की तरफ चला के नहीं लेके गया। सुभान अल्लाह, ये वो लोग थे। तो जब ये आपको थोड़ा सा और आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि जब ये वापस मदीना गए ना तो अपने घर में दाखिल होने से पहले, आप देखें उस वक्त तो कोई फ़ोन नहीं था कि वो फ़ोन पे बता देते लोगों को, घर वालों को बता देते कि जी मैं बेटे की इस तरह वफ़ात हो गई है, ऐसे हो गया, मेरी टांग भी कट गई। देखिए गए सही सलामत थे और वापस आ रहे हैं तो ना बेटा पास है ना टांग है, एक टांग कटी हुई है। तो अब तो वहाँ पहुँचेंगे तो फिर इतला देंगे ना। तो घर में दाखिल होने से पहले ही अपने घर वालों को क्या कह रहे हैं, जो तुम देख रहे हो इससे घबराना नहीं, अल्लाह ने मुझे चार बेटे दिए थे ना, एक उसने लिया है, तीन अभी बाकी हैं, उस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ना ताला ने मुझे चार आज़ाद दिए थे ना, ये दो बाजू और दो टांगे, इसने एक लिया है, तीन अभी बाकी हैं, उस अल्लाह का शुक्र है। वल्लाही इसने थोड़ा लिया है और ज़्यादा मेरे पास बाकी रहने दिया है, इसने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा मुझे आजमाइश में डाला है और बेशुमार आफतों से मुझे बचा लिया है। हमने कितनी दफ़ा ऐसा कभी सोचा होगा, इतना बड़ा जो हम जिसको हम कहेंगे बहुत बड़ा नुकसान और वाकई बड़ा नुकसान है, एक बेटा, जवान बेटा, बड़ा बेटा, उसका चला जाना इंसान के लिए कितना तकलीफ दे है। फिर एक टांग से हाथ धो बैठना, हम तो छोटी छोटी बातों पे, जरा से बिजनेस में नुकसान हो गया, जरा से जॉब चली गई 2 महीने, जरा सी कोई और थोड़ी सी भी चीज़ हो गई तो हम इतना वावेला करते हैं, इतना रोना रोते हैं, इतनी शिकायत करते हैं। सुभान अल्लाह, फिर ये अल्लाह के प्यारे ना होंगे तो क्या हो। तो मैंने सोचा है कि हर दफ़ा हम इंशाअल्लाह ताला किसी एक ताबई या सहाबी का कोई वाकया पढ़ा करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपके दिलों में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो, आप देखेंगे कि जब आप इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे ना तो मैं आपको बता ही नहीं सकती उस मज़े के बारे में। आपको ये दुनिया के लोग और ये चीजें ना कुछ भी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि वो लोग थे वाकई जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के प्यारे थे। वो कैसे प्यारे लोग थे, आपको सही पता चलेगा, क्योंकि आज तो ऐसे लोग कोई नजर ही नहीं आते। आपको सही अंदाजा होगा अल्लाह वाले क्या होते हैं। और फिर हमने जब इनके रास्ते को इन इख्तियार करना है, इनके रास्ते पे चलना है, तो हमें इनकी जिंदगियों के बारे में पता तो चले ना, वो थे क्या। जब उनका पता ही नहीं होगा, बस उनके नाम भी मुश्किल हमें पता है, तो क्या चलेंगे, क्या फॉलो करेंगे। और ये आम इंसान है, याद रखें, कोई पैगंबर नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई वही नहीं आती कि इन्होंने जिब्राइल को देखा हुआ है, तो जाहिर है ये तो ईमान वाले होंगे ही, इन्होंने जन्नत जहन्नम देखी है, ये तो ईमान वाले होंगे ही। नहीं, ये आम इंसान, अवाम थे, जैसे हम आम लोग हैं, ये वैसे थे। ताकि हमारे पास कोई बहाना ना रहे कि हम क्या करें, हम तो कोई पैगंबर नहीं है जो हम इतना सब्र करें या हम ये करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी ज़िंदगी को इन्हीं के ट्रैक पे लेकर आना है। और एक दुआ जो मैं सोच रही थी कि इसी की मुनासिबत से है, और ये भी हम मैंने सोचा है कि करेंगे, कि एक एक दुआ हम याद करेंगे, कुरानी या मसनून दुआ। महीने में एक दुआ तो याद करनी आपके लिए ज़्यादा नहीं होगी ना, क्या ख्याल है। एक दुआ हम याद करेंगे तो कम से कम रमज़ान तक हमें 12 दुआएं तो याद हो गई होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो कोई एक नई दुआ हमने लेनी है। आज के लिए जो दुआ है वो है सूरह नमल की आयत नंबर 19, रब्बी औज़े अनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अन अमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहू व अदखिलनी बि रहमतिक फी इबादिक सालिहीन। ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पे किया और मेरे वालदैन पे किया, और ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझे अपने साले बंदों में दाखिल कर दे। तो हमें तो ये सारी चीज़ें चाहिए ना, शुक्र भी हमने अदा करना है, अपने ऊपर जो नेमतें उनका भी, जो अल्लाह ने हमारे वालदैन पे की तो आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं, उसका भी शुक्र अदा करना है। और इस ऐसा अमल जो अल्लाह तुझे पसंद आ जाए, ऐसा अमल मुझसे करा ले, तो कितना ज़रूरी है। अल्लाह ऐसा काम कर दूँ जो, ये नहीं कि जो दुनिया याद रखे, नहीं, ऐसा अमल करूँ जो सब शाबाश दें, नहीं, ऐसा अमल करूँ अल्लाह जिससे बस तू राज़ी हो जाए, तू मुझसे खुश हो जाए, और अपनी रहमत से अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर लेना। अपनी रहमत से अल्लाह, मेरे तो अमल ऐसे नहीं है, तू मेरे अमल ऐसे कर देना। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है, आप देख सकते हैं सूरह नमल में आयत नंबर 19। इस महीने में याद रखने की एक बात जो आप कहीं लिख के भी लगा सकते हैं अपने लिए, मैं अपने रब के हर फैसले पे राजी हूँ। ये है इस महीने का रिमाइंडर। जहाँ कोई नागवार बात आए, कोई आपकी मर्जी के खिलाफ बात आए, तो क्या कहना है, मैं अपने रब के हर फैसले पे राजी हूँ। उसका जो भी फैसला है मेरे लिए, मैं उस पे राजी। तो ऐसे ही लोग फिर होते हैं, रदियल्लाहु अन्हम व रदू आन, अल्लाह उनसे राजी होता है, वो अल्लाह से राजी होते हैं। अगर आप दुनिया में अल्लाह ताला के हर फैसले से राजी रहेंगे, तो अल्लाह ताला आखिरत में आपसे राजी रहेगा। वहां पे अल्लाह ताला आपको अपनी रजा दे देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मगर शर्त क्या है, इस दुनिया में आप अल्लाह के हर फैसले के ऊपर लब्बैक कहें कि अल्लाह तूने अगर मेरे लिए ये फैसला कर लिया, तूने अगर मेरे लिए ये पसंद कर लिया, तो मुझे किस बात की शिकायत। अल्लाह अल्लाह मैं राजी हूँ, तूने मुझे किसी मुश्किल में डाला है तो अल्लाह तू तेरी कोई मसलहत ही होगी, कुछ सोच के ही तूने डाला होगा, मेरे लिए इसमें बेहतरी ही होगी। तो ये आपने कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड कराना है और अपनी दोस्त अहबाब को भी रिमाइंड कराना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम वो लोग बन जाएं जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, क्योंकि हम जो उससे हर बात में राजी हैं। देखिए अगर आपकी मर्जी का मुताबिक हर चीज़ चल रही हो फिर तो राजी रहना बड़ा आसान है। मेरी मर्जी के मुताबिक सारे फैसले हों, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा दिन गुजरे, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे घर के काम हों, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे बच्चे चलें, मेरी मर्जी के मुताबिक मेरा हस्बैंड हो, सब चीज़ें आपकी मर्जी से ही हों तो आप तो खुद ही खुदा बन गए। खुदा आप नहीं है, अल्लाह ताला है, मर्जी उसकी चलेगी। और जब आपने उसको खुदा मान लिया तो अब फिर मैं उसके हर फैसले से राजी हूँ इंशाल्लाह। इस महीने में अखलाक के लिहाज से जो बात करनी है वो ये है कि हम अपने आप में ये तहिया करें कि जो भी कोई मुझे मिलेगा, कम अक्रॉस होगा, उसे मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर दूँ। यानी जब वो आपसे अलग हो तो आपसे कुछ अच्छा लेके अलग हो। अब आप कहेंगी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से खर्च करूँ, तो पैसों की बात नहीं है, जहाँ पे माली इमदाद की ज़रूरत है वो तो एक अलग बात है। आप ये भी सोच रही होंगी शायद कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे लोगों से मैं मिलती हूँ और मैं उन सारों को क्या दे सकती हूँ। आप बहुत कुछ दे सकती हैं, आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ दिया हुआ है। अगर आप ये गौर करेंगी ना कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया हुआ है, तो फिर तो देना बहुत आसान हो जाएगा। तो मसलन आपको, अगर आप देखें आपके पास सेहत है, आपके पास ताकत है, आपके पास जवानी है, आपके अज़ा सही सलामत है, तो आप किसी का कोई हाथ बटा सकती हैं, किसी को कुछ उठा के दे सकती हैं, किसी को कोई अच्छा मशवरा दे सकती हैं, कोई अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर सकती हैं, किसी को दुआ दे सकती हैं, किसी से आप अलग होने लगें और कुछ भी नहीं, दुआ ही दे दें, कोई अच्छी बात ही कह दें। अच्छा, आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आप बहुत ही लाचार हैं, बड़ी कमज़ोर हैं, कम अज़ कम एक चीज़ तो कर सकती हैं, मुस्कुराहट तो दे सकती हैं ना, इस पे तो कुछ भी खर्च नहीं आएगा, ना कोई अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मगर ये याद रखें, ये तरीका सिर्फ जान पहचान वालों के लिए नहीं करना, हर एक के लिए, जो अनजान भी है उसके लिए भी, ठीक है? ये असूल अगर आपने ज़िंदगी में अपना लिया ना, तो आपके दुनिया में दोस्त ज़्यादा होंगे, दुश्मन कम होंगे। और सबसे बड़ी ये बात कि बाय द एंड ऑफ द डे, यानी जिंदगी के एंड तक, बाय द एंड ऑफ योर लाइफ, आप मुतमईन होंगे कि जो भी मुझे मिला मैंने उसमें से खर्च ज़रूर किया, कुछ ना कुछ ज़रूर दिया अल्लाह के रास्ते में, मैंने लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाया। अरे इस वजह से जब इंसान किसी अपने मुसलमान भाई की मदद करता है ना, तो ये याद रखे अल्लाह ताला उस वक़्त तक उसकी मदद करता है। तो आप अगर किसी की मदद में लगे रहेंगे, किसी के लिए अगर आप कुछ हेल्पफुल हैं, किसी के लिए आप कुछ काम आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके काम संवारता रहेगा। तो लेकिन जब अल्लाह की खातिर हो तो आपको पता है ना कि उसमें फिर ना तो कोई एहसान जताना होगा और ना ही उससे बदले की उम्मीद होगी, ठीक है? और ये बात हमने जहन में रखनी है, सिर्फ किताबों में गुम ना हो जाए। आपकी एक बहन ने कहा था कि आप ज़रा थोड़े से रिमाइंडर हमें, जो रमज़ान में करवाया था उसके कुछ चंद एक चीज़ों के रिमाइंडर हमें दोबारा दे दें, ताकि इन 10 दिनों के लिए भी आप अपने आप को दोबारा से तैयार कर लें। इंशाल्लाह हम आज से ही, अगर छोड़ दिए हमें, तो दोबारा से शुरू करेंगे, ताकि इन 10 दिनों में जो ज़िलहज के आने वाले हैं, इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ इसमें एंटर हों। तो कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी। एक तो ये कि आप रात को अपने वितर छोड़ दिया करेंगे और इशा की नमाज में नहीं पढ़ेंगे, आप वो तहज्जुद के बाद फिर पढ़ेंगे। तहज्जुद पढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला वो पढ़ेंगे। और तहज्जुद के लिए उठना कोई भी मुश्किल नहीं है, आप फजर के लिए सब लोग उठते हैं माशाल्लाह, तो आप फजर से थोड़ा पहले अलार्म लगा लें अपना और उठ के आप फिर तहज्जुद पढ़ें। और तहज्जुद में जितनी मर्जी नवाफिल पढ़ें, जितनी आपको खुशी से आप पढ़ सकते हैं, वो तो खुशी की अपने दिल की बात है, उसमें तो कोई वो नहीं है कि आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आप करना चाहें तो अपने लिए करना है, किसी और के लिए तो नहीं है ना। तो ये है कि आप फिर तहज्जुद पढ़ के फिर वितर पढ़ लें, और जब आप तहज्जुद के वक्त उठेंगे तो सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ें। फिर आप वॉशरूम गए तो थोड़ा सा ज़रा सी मिसवाक कर लें। आप सोचें, इस तरह से सोचा करें कि मैं अल्लाह ताला से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब इंसानों से मिलने के लिए जाती हूँ तो कपड़े भी अच्छे पहनती हूँ, दांत भी साफ़ करती हूँ, मुंह भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ कि साफ़ सुथरी होके जाऊँ। तो सोचिए, कभी आप ऐसे किसी के सामने जाएंगे कि आपके मुंह से स्मेल आ रही हो? तो अल्लाह ताला के सामने खड़ी होने के लिए जा रही हूँ, और रात से मैं सोई भी थी, मेरे मुंह से अगर स्मेल आ रही हो तो कैसे अल्लाह के सामने खड़ी होंगी? ये तो अल्लाह ताला से कुर्बत का वक्त होता है नमाज का। तो थोड़ी सी ज़रा सी मिसवाक कर लें ज़रा, ठीक है? फिर वजू सोच समझ के आप करें, ठीक ठाक जैसे आपको बताया गया था वैसे आप करें। सारा दिन आपने ये कोशिश रखनी है कि मैं वजू से ही रहूं। वैसे भी वजू करती रहे, ज़रूरी नहीं कि आपने नमाज ही पढ़नी है। जब बाथरूम गए, वॉशरूम गए, आपने यूज़ किया, उसके बाद चलो वजू कर लिया, हाथ तो धोते ही हैं, आगे भी वजू भी कर लें। फिर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की कोशिश करें, तमाम नमाजों को कोशिश यही करनी है कि अव्वल वक्त में करें, क्योंकि आपको बताया गया था ना, अव्वल वक्त ज़्यादा फजीलत का वक्त है, ज़्यादा वो ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अजर मिलेगा, ठीक है? फिर आप ये कोशिश करें कि रात को आप जल्दी सोएं, ताकि फजर के वक्त आप फ्रेश उठें, और फिर आप तिलावत वगैरह करके किसी से हो सकता है तो इशराक भी पढ़ ले, एक हज और उमरे का सवाब भी ले ले वो। ये भी आपने सबके लिए शायद मुमकिन ना हो, जो कर सकते हैं तो दोपहर को जोहर के बाद ज़रूर थोड़ी देर के लिए नैप लिया करें, कैलूला किया करें सुन्नत समझ के, इससे आपको फ़ायदा होगा फजर पे उठने का भी। सोने से पहले आप सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, या तो यहाँ अपने पास कोई सीडी प्लेयर, और इतने आप तो मिलते हैं छोटे छोटे भी, आप हेडफोन लगा के अपना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप अपना हेडफोन लगा के वो सुन लें। फिर कोशिश करें कि आप रात को जब सोने लगे तो स्पेशली उस वक्त आप वजू के साथ सोएं। आपको मैंने बताया था ना, एक फरिश्ता आपके साथ रात गुजारता है, फिर सुबह को वो आपके लिए दुआ करता है, और दाएं करवट सोने की कोशिश किया करें। तो ये थोड़े से आपके लिए रिमाइंडर्स थे जो रमज़ान के प्रोग्राम से ही थे। सबसे तो सारी जितनी भी बातें थी उनसे तो हम गो थ्रू नहीं कर सकते एक सेशन में, मगर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी आपको थोड़ी सी उनमें से बातें बता दी जाएंगी। अल्लाह ताला हमारे नसीब में इन 10 दिनों को करे, और हमें इनसे बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इनमें रोज़े रखने की भी तौफीक अता फ़रमाए। जो पहले 9 दिन है, अल्लाह ताला तौफीक दे के हम सारे ही पूरे ही 9 दिनों के रोज़े रख लें इंशाअल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।